अल्लाह अकबर। अब ये जो गौर फिक्र करने वाले बड़े अकल वाले लोग हैं ना, ये कौन से लोग हैं, इनकी क्या क्वालिटीज हैं? आगे ये बताया गया, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे लेटे। इसका एक मतलब तो ये है कि यानी नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में अगर खड़े ना पढ़ सके तो बैठ के, बैठे ना पढ़ सके तो लेट के पढ़ते हैं। एक तो इसका ये मतलब है, ठीक है। दूसरा इसका मतलब ये है कि यानी आप देखें, इंसान इन तीन ही पोजीशंस में कभी हो सकता है ना, या तो खड़ा होगा, या बैठा होगा, या लेटा होगा। यानी वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, हर वक्त। वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह को इतना याद करो कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगेंगे, दीवाना है ये। तो वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह ही की याद उनको महबूब रहती है। ये वो लोग हैं, जाहिर है जब गौर व फिक्र करेंगे इतना तो फिर अल्लाह याद तो रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का कोई कलाम उसके लिए मुफीद नहीं है सिवाय नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और अल्लाह का जिक्र। ये है जो फायदेमंद है। और फिर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर ना दूं जो तुम्हारी सबसे बेहतर अमल हो, जो तुम्हारा तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे पाकीजा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दर्जे बुलंद करने का बायस हो, और तुम्हारे लिए सोने और चांदी खैरात करने से भी अफजल हो, और जब कल तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला तो उनकी गर्दनें मारो या वो तुम्हारी गर्दनें मारे, इससे भी बढ़ के ये अमल है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल क्यों नहीं? आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र। और हजरत मुआज ने कहा अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कोई चीज अल्लाह के अजाब से निजात देने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र जो है ना, वो उसके अजाब से निजात देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह का जिक्र ना करें, वो मजलिस उनके लिए हसरत बन जाएगी। तो आप जहां पे भी जाते हैं, लाजिम है आपके ऊपर कि वहां पे आप अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के खा लें, किसी से बात कर रहे हैं अल्लाह की कोई बात कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठें, मजलिस से उठ रहे हैं तो उसके कफारे की दुआ कर लें, सब अल्लाह के जिक्र हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अल्लाह का जिक्र करें वहां। तो उठते बैठते लेटे हर हाल में कोई पोजीशन उनको अल्लाह नहीं भुलाती, लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम तो सोचते हैं ना लेटी नहीं हूं तो फिर मैं कैसे अल्लाह का जिक्र करूं। अल्लाह का जिक्र सिर्फ ये नहीं है कि आपने बोल के करना, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। मैंने आपको बताया ना, दिमाग जो सोचता है ना, वो अल्लाह ताला की मखलूक पे गौर व फिक्र कर रहा है अल्लाह को पहचानने के लिए। तो वो दिमाग की इबादत है, दिमाग भी इबादत करता है। जुबान से आप बोलते हैं, ये जुबान की इबादत है, जुबान से अल्लाह को याद करना है। तो ये कि भाई मेरे सर पे तो दुपट्टा नहीं है, अब मैं लेटी नहीं हूं तो मैं क्या करूं, तो फिर अभी उठूंगी तो फिर अल्लाह का कोई जिक्र करूंगी, नहीं, आप लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। वह यह तफक्करू नफी खल्क समावाति वल अर्द, और देखें फिर ये बात आ गई कि वो गौर व फिक्र करते हैं आसमानों में और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। जब वो गौर व फिक्र करते हैं ना, तो फिर क्या हो, इसका नतीजा निकलता है। पता है क्या नतीजा निकलता है? वो फिर उनकी जुबान से बेइख्तियार निकल पड़ता है क्या, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की, यानी बातिल मतलब कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं किया। या अल्लाह हर चीज का मकसद है, इवन ये नाखून आपकी उंगली के ऊपर लगा हुआ ना, इसका भी कोई मकसद है। इवन ये छोटी उंगली है, इसका भी एक मकसद है। नहीं है चीज कोई, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कि हर चीज का एक मकसद है। अल्लाह तूने सब चीजों को कोई किसी पर्पस से बनाए, बेफायदा नहीं ऐसे ही बना दिया। चाहे हमें लग रहा हो कि इसका क्या फायदा हो सकता है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था, नहीं, हबस अल्लाह का काम कोई हबस नहीं। अल्लाह ने कोई चीज ऐसे खेल तमाशे के, जैसे वो मुशरिकीन की एक, हिंदुओं की एक है कि ये राम की लीला है, राम ने खेल के तौर पे ये सारी बनाई, तो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, हर चीज छोटी से छोटी भी है ना, बेकार नहीं है। सुबहाना का फिर वो आगे क्या कहते हैं, अच्छा अब आप आगे पढ़ेंगे कि जब वो ये गौर फिक्र करते हैं ना, तो उनकी बातें क्या हैं, ये सारी आप उनकी कन्वर्सेशन आप देखेंगे ऐसी है। फिर आगे कहते हैं सुबहाना का, अल्लाह तो पाक है। सुबहान का मतलब क्या होता है? जो हर ऐब से, हर कमी से, हर खराबी से, हर वीकनेस से, हर फ्लॉ से, हर कमजोरी से पाक हो। इसीलिए सुभान नाम रखना उलमा इसे मना करते हैं कि ये नाम ना रखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, सुभान सिर्फ अल्लाह है, इसलिए हम सुभान अल्लाह कहते हैं बस, सुभान मोहम्मद भी नहीं कहते, ठीक है? क्योंकि हर ऐब से पाक और कोई जात नहीं हो सकती। तो सुभान अल्लाह के वो आगे क्या उठते हैं, सुभान का, सुभान का क्या है, सुभान अल्लाह ही है ये, ठीक है? तू पाक है क्योंकि अल्लाह से डायरेक्ट उसको पुकार रहे हैं ना, तो वो सुभाना का कहते हैं, ला तू पाक है, वाकई तूने कोई चीज बातिल नहीं पैदा की, फकीना आदा बन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। ये अब उन्होंने क्यों कहा, अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये आप और वो क्यों आग के अजाब के ऊपर क्यों पहुंच गए? अभी तो वो बातें कर रहे हैं कि अल्लाह तूने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की, कोई चीज बेमकसद, हम तो बस इतना कह लेते ना, सुभान अल्लाह बस, ठीक है देखे उसके बाद चलो अपने कामों में। लेकिन उनकी कहाँ तक सोच जा रही है, कहाँ तक सोच जा रही है, इस पे आप हैरान होंगे कि वो क्यों कहते हैं फाके ना अदा बन्नार, ये मेरे आपसे क्वेश्चन है, वो क्यों कहते हैं, आग पे क्यों वो पहुंच गए, आग का अजाब उनको कैसे याद आ गया, कायनात में तो गौर फिक्र कर रहे थे। किसी के पास जवाब है इसका, उसके लिए नाम है जिसकी जिस जो जवाब देगा, ठीक है? पहले मैं आपको अगली आयत बताती हूँ, फिर उसके बाद इसका जवाब दूंगी, आप उतनी देर सोचे। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका बेशक, मन तुदखिलिन नारा फकद अखजैता, जिसको तूने आग में दाखिल कर दिया ना, तो तूने तो उसको रुसवा कर दिया। अल्लाह इससे बड़ी क्या रुसवाई होगी कि कोई आग में एंटर हो जाए। अब इससे उलमा कहते हैं कि आग में एंट्री चाहे थोड़ी देर की भी हो, ये नहीं कहना चाहिए कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए आग में चले भी गए तो उसके बाद ठीक है, नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए भी आग में जाना पड़े तो वो एक रुसवाई तो है ना, एक रुसवाई तो है ना, जब लोग गिर गिर के पड़ेंगे पुल सिरात से, या खेच खेच के उनको जिल्लत के साथ ले जाके आग में फेंका जाएगा, तो वो कितनी बड़ी रुसवाई है। तो वो अब कह रहे हैं, अल्लाह जिसको तूने आग में डाल दी, तू हमें आग के अजाब से बचा लेना, क्योंकि जिसको तूने आग में डाल दिया वो तो रुसवा हो गया, वो तो, और हमें देखो दुनिया की रुसवाई का बड़ा डर होता है कि दुनिया के अंदर हमें, हाय मैं रुसवा ना हो जाऊं, हाय मैं बेइज्जत ना हो जाऊं, हाय ये ना हो, मैं ये कपड़े पहन लिए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पास ये वाली गाड़ी हुई तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, हमारा ये इतना छोटा सा घर देख के क्या हमारी इज्जत रह गई है। नहीं, उनको ये नहीं परवाह, उनको देखो वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ की नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं आग के अजाब में जिसको तूने डाल दिया वो रुसवा हो गया, क्योंकि आग का अजाब वाकई रुसवा कुन है, वो कुछ नहीं छोड़ता इंसान का, इंसान के लिए उसकी, आप देखे उसमें है ना सूरह मुद्दसिर में, वमा अदरा कमा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिल बशर, तुम्हें क्या पता जहन्नुम है क्या, सकर है क्या, ना बाकी रहने देगी ना छोड़ेगी वो, ना सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिंदा हो गया तो ना मुर्दा हो गया, लवाहतुल लिल बशर, इंसान को झुलसा देने वाली है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ऐ अल्लाह दुनिया की रुसवाई तो क्या रुसवाई है, अल्लाह हमें आखरत की रुसवाई से बचा ले, ये मुंह के बल घसीट के ले जाया जाएगा वहां। और आप देखें लोग छुपाते हैं तो अपने काम यहाँ पे छुपाते हैं कि यहाँ पे लोगों को ना पता चल जाए रुसवा हो जाऊंगी, यहाँ पे ना लोगों को मेरी बात, ये मेरा गुनाह पता ना चल जाए कि हाय अगर उसको पता चल गया कि मैं ये करती हूँ तो कितनी मेरी रुसवाई है। हालांकि सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि ए अल्लाह जब मखलूक खड़ी होगी और उनके सामने मैं एक्सपोज हो जाऊंगी और मेरे गुनाह आ जाएंगे, तो ये अल्लाह उस वक्त कितनी बड़ी रुसवाई है, ये डर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे कितनों को पता चल जाए, 10 को 20 को, है ना, मगर जो आखरत की रुसवाई है वो तो हमेशा की है, और अगर थोड़ी देर भी उसमें चले गए तब भी कितनी रुसवाई। आप देखें यहाँ पे लोग कोई जेल के अंदर चला जाए, चाहे 4 दिन रह के आ जाए, उम्र कैद नहीं है, चाहे साल भर रह के आ जाए, एक रुसवाई तो है ना, सारी जिंदगी के लिए धब्बा तो लग जाता है। तो ये वो ये कह रहे हैं वो, और कहते हैं वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, अल्लाह जालिमों का कोई मददगार नहीं, वहां पे कौन मदद करेगा, कोई ना खुद को खुद निकाल सकेगा ना कोई उसको आगे निकाल सकेगा। तो ये अब इसका जवाब कि वो कायनात में गौर व फिक्र करके उसके बाद कहते हैं रब्बना मा खलकता हादा बातिला, फिर कह रहे हैं फकीना आजाबन्ना, ये क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब ये है कि जब वो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं ना, तो वो देखते हैं कोई चीज बातिल नहीं है, कोई चीज बेमकसद नहीं है। तो अल्लाह, हमारा भी तो कोई मकसद होगा फिर, है ना? मेरा भी तो कोई मकसद होगा, और अगर मैंने अपना मकसद ना पूरा किया तो इसका नतीजा क्या बन भुगतना पड़ेगा फिर? इसका नतीजा क्या होगा फिर? ये नतीजा तो जरूर इस जिंदगी के बाद ही होगा ना। यानी अभी किसी रसूल ने आके कुछ नहीं बताया, सिर्फ गौर और फिक्र करने से भी इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है। कि वो फिर कहते हैं कि इसका कोई नतीजा होगा, अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया, अगर मैं फेल हो गई तो फिर तो कोई सजा मिलेगी क्योंकि मकसद नहीं पूरा किया। देखिए तफक्कुर ने कहां तक पहुंचा दिया। तो कहते हैं फकीना अजाब नार, अल्लाह के अजाब से बचा ले, अल्लाह सजा से बचा लेना। हर चीज अपना मकसद पूरा कर रही है, मेरा भी तो एक मकसद है। कोई चीज तूने बेमकसद नहीं पैदा की, हर चीज चाहे सूरज चांद दरख्त समंदर पहाड़ जानदार या बेजान, सब अपने मकसद को पूरा करने में लगे। अल्लाह, अगर मैंने अपना मकसद ना पूरा किया तो क्या होगा? वो कांप जाते हैं, तो वो फिर आग के अजाब से पनाह मांगते कि है अल्लाह हमें बचा लेना। फिर कहते हैं रब्बना इन्ना ना समयाना मुनादी युनादी लिल ईमान, ए हमारे रब बेशक हमने सुना एक मुनादी को निदा देते हैं। मुनादी कौन? कुरान भी मुनादी है, पुकारने वाला, ऐलान करने वाला है ईमान के लिए, ऐलान करता है ना कि आओ ईमान ले आओ, आओ ईमान ले आओ, अन आमिनू बि रब्बिकुम, ईमान ले आओ अपने रब पे। और दूसरा मुनादी कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुनादी हैं, क्योंकि उन्होंने भी बुलाया लोगों को अल्लाह की तरफ। और तीसरा मुनादी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक आने वाले कोई आलिम, कोई वाइज जो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए, वो भी मुनादी है। जो भी कहता है आमीनू बे रब्बिकुम, लोगों को बुला रहा है, लोगो आओ अल्लाह के दीन की तरफ, लोगो आओ अल्लाह की तरफ, हमने उसकी बात सुनी। कुछ लोगों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली सुना, अपने कानों से सुना, सहाबा कराम थे वो, और कुछ बाद में आने वाले उन्होंने उलमा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना, अल्लाह की बात को सुना। कुरान भी मुनादी है। तो जो ये सारे कह रहे हैं ना आमीनू बे रब्बिकुम, तो जो भी मुनादी को, किसी भी मुनादी को आपने सुना जो कह रहा है आमन आमीनू बि रब्बिकुम, तो उसका जवाब हमने दिया आमन्ना, तो हम ही मान लिया, हमने उसकी बात मान ली। अल्लाह, हमने कुछ आगे से कोई पसो पेश नहीं की, अल्लाह हमने और कुछ नहीं कहा, हम ही मान लिया। और रब्बाना, ए हमारे रब, हम ही मान लिया है ना, अब फ़ग़फ़िर लाना, तो अब तू हमें माफ कर दे। यानी वो अपने, देखें ये भी सही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने नेक कामों का अल्लाह को वास्ता दे सकते हैं। अल्लाह, अगर तुझे मेरा ये नेक ये काम पसंद आया, वो गार वालों वाली हदीस याद करे, वो जो गार में फंस गए थे और फिर उन्होंने अपने अपने नेक कामों का वास्ता दिया था, अल्लाह अगर तुझे मेरा ये नेक काम पसंद है तो ए अल्लाह तू हमें यहाँ से निकाल दे। ठीक है, तो इसी तरह इंसान अपने ईमान का भी वास्ता दे सकता है कि ए अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह तो इस ईमान के वास्ते हमारी बख्शिश कर ले। तो वो कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब आप जब, यानी जब ये पढ़ते हैं ये आयतें, तो आप भी सोचें कि आपके पास भी निदा देने वाला निदा दे रहा था और आपने उसकी बात मान ली। अब आप कहते हैं और रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह बख्श दे हमारे 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 लिए हमारे गुनाहों को, वकफ्फिरन्ना सय्यातिना, अल्लाह दूर कर दे हमारी ये अगली, ये मैंने आपको बताया सू क्या होता है, अगली चीज, ये अल्लाह ये गंदगी ये बुराई हमसे दूर कर दे, जो हमें चिपकी हुई है बुराई, जो गुनाह चिपक गए हैं हमसे, अल्लाह इनको दूर कर दे। हमारी वैसे भी जो बुराइयां हैं, अल्लाह इनको हमसे दूर दूर कर दे कि हमें नजर भी ना आए ये बुराई। इंसान बाज दफा बुराइयों को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसमें वो अल्लाह की मदद चाहता है कि अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे से खुद नहीं छूट रही, तो अल्लाह दूर कर दे मुझसे मेरी बुराइयां, व तवफ्फना माल अबरार, अल्लाह फौत कर दे हमें नेक लोगों के साथ। अच्छा, अब पहली बात फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ये ऐसा नहीं है कि एक दफा कहने की बात हो कि हमने दिन में एक दफा तौबा इस्तगफार कर लिया तो अब क्या जरूरत है करने की। नहीं, ये उनका बार बार की उनकी ये दुआ होती है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम जो हर एक गुनाह से पाक थे, मासूम अनिल खता थे, 70 से 100 मरतबा दिन में तौबा इस्तगफार किया करते थे। मैं आपसे और मैं अपने आप से अगर सवाल करूं कि क्या हम इतनी तौबा इस्तगफार करते हैं, तो मुझे तो ये जवाब मिलता कि नहीं। शायद आपका भी यही हो कि हम नहीं इतनी दफा तौबा इस्तगफार करते दिल से, जो हमने जैसे करनी चाहिए, हमें जितने हमारे गुनाह हैं हम नहीं करते उस तरह। लेकिन आप अलैहि सलातो वसलाम इतनी तौबा इस्तगफार किया करते थे। तो जब इंसान ये पढ़ता है ना कि नेक लोग कैसे अल्लाह के हजूर तौबा करते थे, तो फिर अपनी तौबा इस्तगफार को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि नेक लोगों की आप जहां पे भी सिफात पढ़ेंगे वो तौबा बहुत करते हैं। और हदीस में आता है जो चाहता है कियामत के दिन उसका अमालनामा उसको खुश कर दे, वो तौबा इस्तगफार बहुत किया कर। इसको एक अपना तरीका बनाना चाहिए। मसलन हर वक्त हम अपना मसलन तकिया कलाम बना लें, चलो हर वक्त हम सोच के नहीं भी कर सकते, तो रब्बे गफिर वरहम, रब्बे गफिर वरहम, सूरह मोमिनून में है ना ये, रब्बे गफिर वरहम। इतना आसान बात है ना, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह माफ कर दे। कौन सी पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की हो जब हमारी माफी हो जाए, हम भी अल्लाह रहम कर दे ना, हो सकता है ना। एक बड़ी प्यारी मैंने तहरीर पढ़ी थी तो आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं एक हेडमास्टर के बारे में एक वाक्या मशहूर हुआ कि वो किसी स्कूल में जब उनको लगाया गया तो उन्होंने अपनी क्लास का टेस्ट लिया। टेस्ट के एंड पे उन्होंने सबकी कॉपियां चेक की और हर बच्चे को अपनी अपनी कॉपी अपने हाथ में पकड़ कर एक कतार में खड़ा हो जाने को कहा। और उन्होंने ऐलान किया कि जिसकी जितनी गलतियां होंगी ना उसके हाथ पे उतनी छड़ियां मारी जाएंगी, उतने रूलर मारे जाएंगे। हालांकि वो नरम दिल थे, बड़ी आहिस्तगी से बच्चों को मार रहे थे, सजा दे रहे थे ताकि सिर्फ नसीहत हो उनको, मगर सजा का खौफ रहे, बच्चे अगली दफा तैयारी करें। तो सारे बच्चे खड़े हुए थे, सब हेडमास्टर सब बच्चों से ना उनकी गलतियों पूछते थे, आपकी कितनी गलतियां, फिर उसके मुताबिक उनके हाथों पे छड़ियां मारते थे। एक बच्चा ना बड़ा घबराया हुआ था। जब वो उसके करीब पहुंचे और उससे उसकी गलतियों के बारे में पूछा तो खौफ इतना था कि उसके हाथ से उसकी कॉपी गिर गई और वो कहने लगा, बहुत मुझे हमेशा ये बड़ी इमोशनल लगती है, कहने लगा मुझे माफ कर दे, मेरा सारा कुछ ही गलत है। तो वो हेडमास्टर जो थे वो इस जुमले की ताब नहीं ला सके, उनकी अलग से जोर से चीख निकली, हाथ से चढ़ी गिर गई, वो जारो कतार रोने लगे और बार बार कहने लगे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा तो सब कुछ ही गलत। तो रोते रोते उनकी हिचकी बंद गई, कहते जा रहे थे तुमने ये क्या कह दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा तो सब कुछ ही गलत है। तुम्हारा तो सब कुछ ही गलत है, सिर्फ अल्लाह की रहमत ही है कि हमारी बख्शिश हो सकती। तो वो ये दुआएं करते हैं, फग़फिर लना ज़ुनूबना। देखिए फिर गौर और फिक्र कहाँ तक पहुंचा देता है कि इंसान जब पहचानता है ना कि वो रब कितना बड़ा है और मैं क्या चीज हूं, और मैंने कितनी उसके हक में कमियां की, मैंने कितनी कोताहियां की, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे तो एक लम्हे भी ऐसे रब की जो सुभान है उसकी एक लम्हे के लिए भी मुझे नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं क्या कर बैठी। तब वो अपने गुनाहों के बोझ को लेके अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है, फिर वो रोता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं क्या कर बैठा, अल्लाह मेरा खात्मा भी अबरार के साथ करना, नेकों के साथ करना है अल्लाह। क्योंकि इंसान जो इंसान दुनिया में नेक लोगों के साथ रहता है वो नेकों के साथ ही मरना चाहता है। और वाकई इंसान खुद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, पता है जब वो नेकों की सोबत में रहता है तो उससे बड़ा फायदा होता है उसको। कैसे, वो कहते हैं ना कि जो आपने देखा होगा कि ये चावलों में गंदम में कंकर भी होते हैं, मगर वो कंकर चूंके वो चावलों के अंदर होता है, वो चावल के भाव ही बिकता है, चावल के साथ ही पैक होता है, चावल के साथ ही कंधों पे उठा के ले जाया जाता है। अगर वो कंकर चावल में ना हो और उससे अलग हो तो पैरों में कहीं रुल रहा हो, लेकिन वो उस कीमती चीज के साथ होता है ना, तो उसकी भी कीमत उसके मुताबिक ही लग जाती। तो नेक नहीं भी है, नेकों की सोबतें अपनाए, नेकों के साथ उठे बैठे, नेकों का साथ चाहे। देखो सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहि सलाम की दुआ है वो, अलहिकनी बिसालिहीन, अल्लाह मुझे सालहीन का साथ अता फरमाना, उनके साथ मिला देना। तो दुनिया में भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए। देखिए अगर दुनिया में नेक लोग पसंद नहीं है और उनके वो बुरे लगते हैं और उनके कई ऐब, ये क्या, ये तो पता नहीं कौन सी सेंचुरी के लोग हैं, ये तो पता नहीं क्या बैकवर्ड है, ये तो पता नहीं क्या है, उनसे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि बस मादर पिदर आजाद है, और जो आज के दौर में जो मॉड स्क्वाड कहलाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हर हुक्मों को तोड़ के अपनी मनमानियां की हैं, अगर वो महबूब है आज, तो जाहिर है जो जिससे मोहब्बत रखता है उसी के साथ वो कयामत के दिन होगा। और अगर किसी को सालेहीन का साथ पसंद है तो जाहिर है वो इस दुनिया में भी कोशिश करेगा कि इनके साथ रहे और आखरत में भी, और चाहेगा कि अल्लाह उनके साथ ही मुझे रखना। आपको पता है मूसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने जब दुआ की है, आपको पता है जब उनकी मौत का वक्त आया, उन्होंने कहा था ए मेरे रब, मुझे बैतुल मकदस से इतनी दूर बस कर दे, यानी इतनी करीब कर दे जितना एक पत्थर फेंका जाता है ना, जितना उतना फासला होता है, कि अगर मैं वहां पे नहीं भी पहुंच सकता तो अल्लाह मुझे उस जगह के करीब कर दे। और उलमा कहते हैं, इब्ने हजर ने लिखा है, क्योंकि वहां पे अंबिया मदफून है, वहां पे औलिया शुहदा, वहां पे उनकी कब्रें, तो उनका जवार चाहते थे, उनका कुर्ब चाहते थे। हजरत उमर भी देखें, उनकी ख्वाहिश क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफनाए जाए। तो जो सालेहीन के साथ दुनिया में मोहब्बत रखते हैं, बरार के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो चाहते हैं कि फौत भी उनके पास ही, उनके साथ ही हो और उनके करीब ही दफन हो और कयामत में भी उनके साथ ही हो। तो लेकिन जो इंसान की जैसी जिंदगी होती है वैसी ही उसकी मौत होती है, तो अगर चाहते हैं कि मौत भी अच्छे लोगों के साथ ही हो तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो नेक है, जो अल्लाह की बंदगी का हक अदा करने वाले। रब्बना व आतिना मा वअतना अला रसूलिका वला तुखजीना यौमल कियामा, यार हमारे रब हमें वो अता कर दे जिसका तूने हमसे वादा किया है अपने रसूल के जरिए। वला तुखजीना यौमल कियामा, अल्लाह हमें कयामत के दिन रुसवा ना कर देना। लेकिन पहले भी कहा कि अल्लाह वो तो रुसवा हो गया जो आग में चला गया, और एक कयामत के दिन की भी रुसवाई है ना। ने आपको बताया ना कि देखिए इस दुनिया की रुसवाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, किसी का नाम अखबार पे आ जाए, किसी का टीवी पे आ जाए, उसकी कोई रुसवाई हो गई बेचारे की, लेकिन कयामत के दिन की रुसवाई का तो इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो कितनी बड़ी रुसवाई होगी, कि जब ये माँ बाप बहन भाई दोस्त अहबाब और जो मिलने जुलने वाले और जो जानने वाले और जो ना जानने वाले सबके सामने रुसवाई, इंसान का पैर फिसल जाए और वो गिर जाए ना, तो कहता है हाय मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो उनके सामने जलील हो गई। वो नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने गिरूं भी। और सोचे जब इंसान का एक एक कच्चा छट्टा सामने लाया जाएगा, एक एक तन्हाई की बातें, दिलों की बातें, एक एक जुबान दराजियां, एक एक जो अमल है वो सामने आ जाएगा, तो कितनी रुसवाई है। तो वो कहते हैं अल्लाह हमें रुसवा ना करना कयामत के दिन, हमें वो दे जिसका तूने अपने रसूलों के जरिए वादा किया हुआ है, यानी जन्नत की नेमतें अता फरमा। मुहाजिरीन मुसलमान जो थे उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिल्कुल पता चलता है कि अल्लाह तूने जो हिजरत करने वालों का जो अजर लिखा है, अल्लाह जो तूने वादे किए हैं जो तेरे रास्ते में चलते हैं अल्लाह ताला, तो वो वादे पूरे कर हमारे लिए, जो वादे हमें पता चले हैं रसूल के जरिए। इन्नका ला तुखलिफुल मीआद, अल्लाह तू अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। तो ये उनको कहने की क्या जरूरत है, जो तो अल्लाह को भी पता है वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, उनको भी पता है अल्लाह ने वादे के खिलाफ नहीं करना, तो फिर कहने की क्या जरूरत है अल्लाह तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ताला को नाउज़ु बिल्ला कोई रिमाइंड थोड़ी करा रहे हैं। तो पहली बात ये है, इसका पहला जवाब ये है, तीन जवाब है इसके। पहला जवाब ये है कि दुआ जो होती है ना वो उसमें इंसान अंतहाई आजी करे, और जिस चीज का पता भी है कि ये मिल जानी है फिर भी उसके लिए दुआ करे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तौबा इस्तग़फार करते थे, आपके तो मैंने आपको ये शाने नज़ूल भी बताया, तो उसमें मैंने बताया ना कि उन्होंने फरमाया कि आपके तो सारे अगले पिछले गुनाह माफ है, अल्लाह ने आपको माफ किया हुआ, तो आप किस बात पे इतना रो रहे हैं, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तग़फार किया करते थे। तो दुआ करनी है, चाहे पता है कि ये चीज मिल जानी है तब भी दुआ करो, तब भी कहो। नंबर टू बात ये है कि अल्लाह, ये बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह तूने जिन जिनसे वादा फरमाया है ना जन्नत का, इसका तो जाहिर है नाम ले लेके तो नहीं बताया कि वो आयशा भी जन्नत में जाएगी, साइमा भी जन्नत में जाएगी, फातिमा भी जन्नत में, ऐसे तो कोई वादा किसी का, वो तो अशरा मुबशरा थे या जिनके नाम लिए गए वो उस वक्त आम लोगों के तो नाम नहीं लिए गए ना। हाँ बस ये बताया गया जिन जिनके अंदर ये नेक काम ये ऐसे करने वाले होंगे, जो ईमान वाले होंगे, जो ये करते हैं ये करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह हमें नहीं पता, पता नहीं हम उनके अंदर हैं भी शामिल या नहीं है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता हमारे अंदर वो वाली चीजें हैं भी या नहीं जो तूने जिनके पर वादे किए हैं। इसलिए अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने रसूलों के जरिए जो हमसे वादा फरमाया वो हमें अता कर दे, यानी हमें भी उनमें शामिल कर दे। हम इस काबिल तो नहीं है कि ये वादा हमारे लिए हो, लेकिन अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं तू हमें भी उनमें शामिल कर दे। ठीक है, तो ये तेरा वादा है तो हमें भी उनमें। और तीसरी बात ये कि अल्लाह तूने ये वादा किया है कि तू मुसलमानों को गलबा देगा, लेकिन वो गलबा कब होगा ये तो नहीं पता ना, तो अल्लाह हमें वो गलबा दिखा दे। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तू खिलाफ नहीं करता अपने वादे के, तू नहीं करेगा खिलाफ, ये यकीनी बात है, मगर हमें हमारी जिंदगियों में दिखा दे कि हम भी गलबा देखें। तो अब ये पांच दुआएं हो गई जो उन्होंने की है। ठीक है, अब जब ये पांच दुआएं उन्होंने कर ली तो उनका जवाब अल्लाह ताला ने कैसे दिया, फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, फस्तजाबा कबूल कर लिया अल्लाह ने, ये नहीं कि वो करेगा और वो देखेगा कि उसने कबूल करना है कि नहीं करना, नहीं, वो कबूल कर चुका इनकी दुआएं, इनके रब ने कबूल कर ली है। सुभान अल्लाह, क्या अनिला उदियो अमल आमिल मिनकुम, के फिक्र ना करो मैं तुम्हारे अमल जाया नहीं करूंगा, जो अमल करने वाला है ना तुम में से, मिन जकरिन और उनसा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, ऐसा नहीं मैं करूंगा। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि औरतें हैं तो इनका कम नंबर देंगे, क्योंकि ये औरतें जो है इस्लाम से पहले देखिए औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, आखरत में या अल्लाह ताला के हाँ अजर देने में नेकी के काउंटिंग में इस चीज की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आदमी है लिहाजा इसके लिए ज्यादा है और औरत के लिए कम है। लेकिन अगर आदमी को जिहाद पे जाने पे अजर है तो औरत के लिए बच्चा पैदा करने और उसकी तकलीफ सहने के ऊपर अजर है, अगर आदमी को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में अजर है तो औरत को घर के अंदर नमाज पढ़ने में अजर है। याद रखिए दोनों के फील्ड ऑफ वर्क डिफरेंट है, जिस फील्ड में उसने, वो औरत डिफरेंट फील्ड में काम कर रही है, आदमी डिफरेंट फील्ड में काम कर रहा है, मगर इसमें कोई फर्क नहीं है कि अल्लाह ताला कहीं औरत तो इंसान ही नहीं है, जैसे पहले जमानों के अंदर वो करते थे कि औरत जो है ना सिर्फ मर्द को सर्व करने के लिए पैदा की गई है, और इसमें तो वो कहते थे, यहां तक कहते थे कि पता नहीं इसके अंदर रूह भी है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन करते थे, यानी पता नहीं इंसान भी है कि नहीं, ये भी जमाने औरतों के ऊपर गुजरे, हम तो बड़े उसमें रहे हैं, मगर आप पिछले जमानों की अगर आप देखें ऐसी जो इन्होंने बनाई हुई है कि पुराने जमानों में क्या हुआ करता था औरतों के साथ, जो फिल्में इसके ऊपर बनी हुई हैं और वो उनमें हालात दिखाते हैं कि औरतों के ऊपर क्या होते थे, तो वो ऐसे लगता है कि औरत इंसान नहीं है, ये बस ऐसे ही कोई जैसे भेड़ बकरियां होती हैं ना इस तरह ही एक चीज है, असल मर्द ही है बस, तो वो इसलिए अफजल है क्योंकि वो मर्द है बस। अल्लाह ताला ऐसे नहीं कहता कि वो मर्द है इसलिए वो अफजल है, ये ओपन है मैदान, जो मर्जी जितना मर्जी इसमें आगे बढ़ना चाहे, बहुत सारी औरतें मर्दों से भी आगे निकल जाती हैं दीन में, ईमान में, नेकी में, तो इसलिए कभी ये ना सोचे हाय हम मर्द होते ना तो हम कितना कर सकते थे, उनको अगर कोई काम दिए गए हैं तो वो उनके मुताबिक है, उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, उनके जो उनके अल्लाह ने एबिलिटी दी है उसके मुताबिक, अगर वो जंग कर सकते हैं, वो लड़ाई कर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं, वो दिफा कर सकते हैं, वो अगर वो कर सकते हैं, वो मस्जिदों तक चल के जा सकते हैं, अल्लाह ने ये जो जिम्मेदारी है ये औरत पे इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसकी साख्त, उसकी जिस्मानी जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है, उसको उस मुताबिक बनाया जो उसका काम है करने का। दूध पिलाने पे औरत को अजर है, बच्चे को, आदमी को तो ये सारी जिंदगी नहीं मिलना, ये 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के ऊपर उसके लिए अजर है, वो जो डिलीवरी करती है उसके लिए अजर है, बच्चे को पालने के ऊपर उसके लिए अजर है। अब ये देखे ना, इन चीजों से तो आदमी महरूम है ना, वो सारी जिंदगी कोशिश करता रहे नहीं पा सकता, मगर औरतों ने क्या करना, उनकी नकल जरूर करनी जहां पे उनकी काम आ जाएगी। हाय हम आदमी होते ना तो फिर हम ये भी ये कर लेते, देखो ना, तो जो आपको दिया गया आप उसको क्यों नहीं करती, आप उसके पर अजर पा सकती हैं। अब 2 रकत नमाज अगर आदमी पढ़ेगा, तहज्जुद की आदमी पढ़ेगा या औरत पढ़ेगी, कोई फर्क नहीं है, अल्लाह ने ये नहीं कहा ना ये आदमी है तो इसलिए इसको ज्यादा नंबर मिले, इसको नेकी ज्यादा लिखो, रोजा रखे आदमी रखे या औरत रखे, दोनों का सेम अजर है। इसी तरह बाकी जितने भी नेकी का काम है, चाहे वो हज है, चाहे वो जकात है, चाहे वो और किसी के काम आना है, सबके अंदर बराबर का अजर है। फिर भी औरतें नाला रहती हैं हर वक्त शिकायत, हम तो औरतें हैं ना, हमारा ये, और देखिए इस चीज को नहीं ये सोचना चाहिए कि आप औरत है तो आपको अल्लाह ने कोई नाउजुबिल्ला कोई महरूम रख दिया है, आपके उस मुताबिक आपके दर्जे, आपके यहाँ काम डिफरेंट है, उनकी नौइयत डिफरेंट है, वो जाहिर है आपके मुताबिक है, मर्दों की उनके मुताबिक दी गई है, मगर अगर आपने अल्लाह के यहाँ जन्नत में दर्जे पाने हैं आप भी पा सकती हैं। आपको ये सेकेंडरी सिटीजन नहीं रखा गया वहां पे कि जन्नत में औरतें नीचे रहेंगी क्योंकि वो औरतें हैं, आदमी सिर्फ ऊपर जाएंगे, अगर ये होता तो फिर आप कहते बात, हाँ कि काश हम भी आदमी होते तो ऊपर के मर्तबे बातें, नहीं ऐसे नहीं, वहां पे आप जाएं जितनी आप तेज भाग सकती हैं भागे इस रास्ते के अंदर, कोशिश करें इस रास्ते में, ठीक है, जितना हिफ्ज करने का आदमी को सवाब मिलेगा औरत को भी उतना ही, जितना दीन की खिदमत करने का आदमी को सवाब है औरत के लिए भी इतना ही। तो ये सब चीजों को बजाय शिकायती रवैया रखने के यहाँ पे देखे कि क्या कहा गया, मिन जकरिन और उनसा। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल्ला मैंने हिजरत में औरतों का जिक्र नहीं सुना तो कि औरतों का अलग से कोई जिक्र किया गया, हालांकि कुरान पाक में जहां जहां जो अहकाम मर्दों को दिए गए इल्ला माशा अल्लाह वो औरतों के लिए भी हैं, ठीक है, वो सब औरतों के लिए, जब कुम कुम कहा जा रहा है तो उसमें औरतें भी शामिल हैं, तो तब ये आयत नाजिल हुई और इसमें अलग मर्द और औरत का भी जिक्र किया गया और फरमाया बादुकुम मिन बाद, तुम में से बाज में से। देखिए हर औरत के लिए एक बाप भी जरूरी है, एक मर्द जरूरी है जिससे वो पैदा होती है, और हर मर्द को पैदा होने के लिए भी एक औरत की जरूरत है जो उसकी माँ होगी जिससे वो पैदा होगा। तो अल्लाह ने जो मकसद इंसान की तखलीक का बनाया वो दोनों का सेम है, बास बाज में से हो। फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उजू फी सबीली, अब ये एक लिस्ट दे दी गई है, स्टेप्स हैं कि ये काम करने वालों के फिर अल्लाह ताला उनके लिए क्या दर्जे रखेगा, रखे हैं अल्लाह ताला ने अपने पास। असल में बात ये है कि देखिए जब इंसान दीन के लिए कुर्बानियां करता है, दीन के लिए हिजरतें करता है, दीन के रास्ते में अपने आप को लगाता है ना, तो बहुत सारी चीजें बाज दफा उसको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, है ना, कहीं मे भी कारोबार में कमी करनी पड़े, आम हालात की बात करें, या मे भी किसी कोई ऐसी जगह पे रहते हैं उनको घर छोड़ने पड़े, यहाँ ऐसी कोई मुसीबतें उनके ऊपर आ जाए दीन की वजह से, तो जब वो कोई ऐसे करता है ना तो लोग पता है क्या देख के कहते हैं, हाय बेचारा, हाय हाय कितना बेचारा, तो फेलियर ही है, इसने क्या देखा, इसका क्या रहा, इसका क्या बना। उनको लगता है वो लोग जिन्होंने कारोबार बड़े बना लिए, जिन्होंने बड़े बंगले बना लिए, जिन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया, वो कितने कामयाब है, और ये बेचारे इनके ऊपर अफसोस करते हैं कि ये नाकाम लोग हैं, महरूम लोग हैं। अल्लाह ताला ने बताया नहीं, आज अब आप देखें जरा यहाँ पे, फल्लदीन हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरतें की। अब वो कोई कहेगा ना, अरे बेचारा हिजरत करके देखो इसको तो घर बार छोड़ना पड़ा, कहीं का रहा ही नहीं, देखो कहाँ रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, देखो कहाँ। अगर हिजरत अल्लाह की खातिर है, मतलब हिजरत अल्लाह की खातिर मतलब क्या है कि किसी औरत के लिए शादी के लिए नहीं, किसी जॉब के लिए नहीं, किसी कारोबार के लिए नहीं, या एजुकेशन के लिए नहीं दूसरे मुल्क गया। वो इसलिए गया कि वहां पे जहां वो रह रहा था वहां पे अल्लाह के दीन पे चलना उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था, तो उसने उतना वतन छोड़ दिया अल्लाह की खातिर। तो ये है हिजरत जो अल्लाह की खातिर की जाए। तो जिन लोगों ने हिजरत की, और दूसरा इसका याद रखे, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ पे भी देख के कहते हैं ना हमारे लिए फिर क्या रह गया, आए हाय हम तो हिजरत कर ही नहीं सकते। तो हदीस में आता है असल मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा हर बात को छोड़ देता है, वो है मुहाजिर। यानी इंसान जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनको छोड़ दे, तो ये भी उसकी हिजरत है। क्योंकि हिजर का माना क्या होता है, छोड़ देना, माइग्रेट कर देना उससे। ठीक है, तो हमारे पास तो ये हर लम्हे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कि हम एक हमारे सामने काम होता है जो अल्लाह ने मना किया है, दूसरी तरफ वो काम होता है जो हमारी यानी दूसरी तरफ अल्लाह की पसंदीदा कोई काम है, जो मना करदा काम है वो हमें मुश्किल लगता है छोड़ना, उसमें हमें मजा आता है, वो हमारा पसंद का है, हमारा जी चाहता है हम वो करें, लेकिन हम उसको क्यों छोड़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह ने मना किया। वो छोड़ना भी उससे हिजरत करना है। तो आज अगर आप वतन नहीं छोड़ सकते मगर ऐसा किरदार तो अपना सकते हैं ना जो मुहाजिर जैसा किरदार है। ठीक है, तो आप बुराइयों से, मसलन गइबतों से, चुगलियों से, झूठ से मैंने हिजरत कर दी, बेपर्दगी से मैंने हिजरत कर दी, हराम कमाई से मैंने हिजरत कर दी, तो ये सारी हिजरतें हैं। वह उखरिजू मिन दियारहिम, और वो निकाले गए घरों से। अब ये ऐसे लोगों को भी कोई देखता है ना कि ये किस लिए इनको निकाला जा रहा है, ममा नकमू मिनहुम, इनसे कोई नाराज, सूरह बुरूज में आता है ना, इनसे वो नाराज नहीं है मगर सिर्फ इस वजह से क्या के सिर्फ नाराजगी की वजह क्या, ये अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। तो वो लोग जो अल्लाह की खातिर अपने घरों से निकाले गए उनके लिए भी अल्लाह के हाँ दर्जे हैं। और इनमें ये सारे रेफ्यूजीज भी आ जाते हैं जो कि आज रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए हैं, उनको उनके घरों से सिर्फ इसलिए निकाला गया है। क्या वजह है? कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। और वह उजू फी सबीली, और वो अजियत दिए गए मेरे रास्ते में। उनको अजियतें क्यों दी गई? क्योंकि वो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। सुभान अल्लाह, आज आप देखें बहुत सारे लोगों को सिर्फ क्यों सताया जा रहा है दुनिया में, आप देखें, इसलिए कि वो मुसलमान है। उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो मुसलमान है, दैट्स इट, और उनका कोई कसूर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने देखें सूरह बुरूज में, पुराने लोगों के साथ भी यही होता रहा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन यूमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। उनका कसूर क्या है? सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना उनका कसूर है, और इसकी वजह से उनको सताया जा रहा है, उनको अजियतें दी जा रही हैं, फिजिकल भी टॉर्चर है, वर्बल अब्यूज भी हो रही है। वो आज अपना दीन छोड़ दें तो फिर सबके ठीक है। तो वो निकाले गए, वो सताए गए, वकातलू, उन्होंने जंग की अल्लाह के रास्ते में, वकुतिलू, और वो मारे गए, जंग भी की, वो मारे गए जंग के अंदर, लउकफ्फिरन्न अनहुम सय्यिअतिहिम, यानी उन्होंने अपनी जानें भी दे दी। ये तो हाइट है ना, ये तो यानी पीक है इस चीज की कि वो जितनी कुर्बानी दे सकते थे, कि यानी हर तरह की उन्होंने तकलीफें उठा ली अल्लाह के रास्ते में। तो छोटे से बड़े की तरफ है, एक है हिजरत करना, वो खुद इंसान चला जाता है, एक है निकाल दिया जाना, वो कितनी बड़ी अजियतनाक बात है कि खुद नहीं निकले थे मगर उनको इतना मजबूर किया गया, या उनको एक्सपेल कर दिया गया, उनको जहाजों में बैठा के भेज दिया गया, या उनको इतनी अजियतें, इतने सताए गए वो अल्लाह के रास्ते में, या उन्होंने जंगें लड़ी और उसके बाद वो मारे गए। ये लेवल्स हैं कुर्बानी के। ऐसे कुर्बानी करने वाले बेचारे नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला उकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देगा। वो दुआएं करते थे ना कि अल्लाह हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, अल्लाह दूर कर देगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये उनके लिए अल्लाह ने ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो ये है बदला अल्लाह की तरफ से, सवाबन मिन इंदिल्लाह। हालांकि बदला कैसे बना आप मुझे बताएं, बताएं बदला तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जान तो अल्लाह की दी हुई थी, माल भी अल्लाह का दिया हुआ था, जिंदगी भी अल्लाह की दी हुई थी। अगर जिंदगी भी दे दी, जान दे दी, माल चला गया, वतन छूट गया, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ था। अगर वो अल्लाह के रास्ते में लग भी गया तो कुछ भी नहीं किया हमने कोई। अगर हम पूरी जिंदगी भी अल्लाह के रास्ते में लगा देना, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए सारी चीजें उसकी थी। अगर आंखें आपकी थक गई हैं, या मैं बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के आपको थक गई, तो क्या किसी पे एहसान है? ये अल्लाह ने दी भी है ये जुबान, ये गोयाई की कुव्वत, ये वक्त, ये जिंदगी। अगर उसके रास्ते में ही ना लगा तो कहीं भी और लगा तो फालतू है, और अगर उसके रास्ते में लगा दी तो कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया, उसी की तो दीवी। आप देखिए, आपके पास अपनी कोई चीज कोई रखवा दे, थोड़े दिन बाद आके आपसे ले, तो आप क्या कहेंगे? बोला मैंने बहुत एहसान है कि मैं आपको दे रही हूँ, आपने क्या दिया उसको? उसकी चीज आपने उसको वापस कर दी, उसने तो रखवाई थी, उसकी तो अमानत थी आपके पास थोड़े दिन के लिए। तो जिंदगी का एक एक लम्हा भी अगर कोई लगा दे ना, तो कुछ नहीं उसने किया। सारी जिंदगी ख्वाहिशात को छोड़ के अल्लाह की मर्जी से गुजार दें, तब भी कुछ हक नहीं हमने अदा किया। तो फिर अल्लाह बदला क्यों कह रहा है? हाँ? इस ऐसे भी अल्लाह का ही है सब कुछ, इसलिए कि ये अल्लाह की कदरदानी है, ये अल्लाह की कदरदानी है। वो अशकूर है, वरना इंसान जितना मर्जी कर ले, वो तो ये उसको बदला नहीं हो सकता जो जो उसको अल्लाह ताला दे रहा है, क्योंकि वो जो दे रहा है वो इनफिनिट है, लाफानी है, उसको फना नहीं है। जो कुछ यहाँ पे इंसान कर रहा है वो तो सब फानी है, क्या चीज है यहाँ पे, तो कुछ भी रह जाना। अगर जिंदगी ना भी अल्लाह के रास्ते में लगाई तो तब भी मर ही जाना, तब भी मैंने आपको बताया था ना मट्टी हो जाना, तो लगा दो इसको इससे पहले कि ये सब जिसम मट्टी हो जाए। तो जो अल्लाह देता है उसको कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ जो इंसान करता है। बदला बहुत बड़ा है, कदरदानी बहुत बड़ी है, हकीकत में तो बराबर का होता है बदला। उसको बदला कहते हैं जो आपने एक किसी को चीज दी, उसने उसकी कीमत आपको उसके मुताबिक दी। ये तो काम तो इतना सा, कीमत कितनी बड़ी है, कितना बड़ा बदला जन्नत की सूरत में। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी शफकत है, उसकी इंसान के ऊपर मेहनत रहमत है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करता है, और अता करने वाला अपनी शान के मुताबिक अता करता है। वरना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ दिया जाए इंसान को, तो इंसान की औकात नहीं है कि वो कोई जन्नत जैसी या उसके करीब भी कोई चीज पा ले। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह की खातिर कुछ लगाने से ना झिझका ना करें, ये लॉस नहीं है, आप बहुत बड़ा प्रॉफिट का सौदा कर रहे हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नु सवाब, अल्लाह ताला के पास जो है ना वो तो अच्छा बदला है, बहुत बेहतरीन बदला है। फिर इंसान सोचता है, ये भी सोचता है कि देखो ये जो जो ईमान लेकर आए दुनिया में बेचारे रुल रहे हैं, कैसे दीन पे चलने वालों का क्या हाल हो रहा है, और ये जो काफिर है ये कितनी मन मौजी कर रहे हैं, इनके पास कितनी नेमतों के अंबार हैं, और ये कितने मजे कर रहे हैं। हर कंपनी का सीईओ देखो तो वो कोई काफिर बैठा हुआ है, हर हर बिजनेस में ऊपर देखो तो वो काफिर है, और वो तो अल्लाह के नाफरमान है। तो फिर कैसे ये क्यों ऐसा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमारे भी जहन में कई दफा आता होगा, बहुत जगहों पे आप जॉबें करते हैं, वहां पे ऊपर ऊपर वो जा रहे हैं जो बुतों को पूजने वाले हैं, आप कहते हैं हाय मैं तो मुसलमान, ये फिर क्यों ऐसा है, इनको क्यों सारा कुछ मिल रहा है? ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लदीन कफरू फिल बिलाद, वो बंदे ना धोखा खा, इनके चलने फिरने से इन काफिरों के मुल्कों में इनकी शोशा, इनकी चकाचौंध, इनकी जो जबरदस्त इनकी तरक्कियां हैं, इनकी शानो शौकत, इनकी टिप टॉप देख के तुम धोखा ना खा जाना, ओवरवेलम ना हो जाना, मुतासिर ना हो जाना, मताउन कलील, तुम्हें समझ नहीं आती है कितना थोड़ा फायदा है, मताउन कलील। अगर आप वो जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे ना, जाके समुद्र में उंगली डबो के निकाल के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा मताउन कलील। इसको सारी दुनिया भी मिल जाए तो मताउन कलील है, उनको तो क्या मिला, थोड़ी सी चीजें, उसके ऊपर ही हम इतने परेशान हो जाते हैं, आए इनको कितने फायदे मिल रहे हैं, आए हमारे लिए क्या रह गया, हमारे तो मुसीबतें ही मुसीबतें, ये कितने मजे में है, कितनी मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, आजाद हैं, फलां हैं, देखो हमारे लिए सब कुछ मुसलमानों के लिए, वो मताउन कलील है, ये नहीं सोचते है सुम्मा वह हम जहन्नम वह बेसल मिहाद, उसके बाद इनका ठिकाना क्या है जहन्नुम में, कितना बुरा ठिकाना है वो। एक बुखारी और मुस्लिम में एक रिवायत आती है, हजरत उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए थे, पर चटाई के दरमियान और आपके दरमियान ना कोई चीज नहीं थी, यानी कोई गद्दा वगैरह नहीं था, आपके सर के नीचे चमड़े का बस एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पैरों के पास एक दरख्त के पत्तों का ढेर था, अल्लाह अकबर, ये उनका बिस्तर था, सोचे बिस्तर, और आपके पास कच्ची खाले लटकी हुई थी बगैर रंगी हुई, और कहते हैं मैंने देखा चिटाई के निशानात आपकी सारी कमर पे पड़े, गाड़ गए हैं वो आपके कमर पे, तो कहते मैं रोने लगा, रोने लगे किस चीज को देख के, कि या रसूल्ला कि वो तो जो कैसरो किसरा है वो कितनी शानो शौकत में, वो कितने मजे में, और आप इस तरह से, आपने देखे ना जब देखता इंसान तो फिर ख्याल आता है ना, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो आपने फरमाया ए उमर क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया और हमारे लिए आखरत हो, ए इब्ने खत्ताब क्या तुम्हें शक है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दुनिया में ही दे दिया, तो कहते हैं मैंने कहा या रसूल मेरे लिए इस्तगफार करो, तो दुनिया की कीमत क्या है, हदीस में आता है कि अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो काफिर को अल्लाह ताला एक घूंट भी ना देता, एक घूंट पानी ना इसको मिलता, लेकिन अल्लाह के नजदीक मच्छर तो क्या, मच्छर की भी कोई वैल्यू नहीं, मच्छर का जो पर है उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन उतनी भी वैल्यू नहीं है मच्छर, ये नहीं कि मच्छर के पर के बराबर वैल्यू है, उतनी भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर उतनी भी होती तो अल्लाह ना देता इनको एक घूंट पानी, लेकिन इसका मतलब कितनी हकीर है ये दुनिया अल्लाह के सामने, और अल्लाह ने उनको दे दी जितनी, तो तुम क्यों रीझते हो इस बात पे, क्यों गम करते हो इस बात पे, मोमिन का तो कैद खाना है ये दुनिया, काफिर की जन्नत है, हाँ काफिर को अल्लाह ने दुनिया में जजा दे देनी है ताकि आखिरत में उसके लिए कोई नेकी ना बचे, तो लेकिन फिर भी हम इन बातों को ना भूल जाते हैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर हम इनको तरफ देखते हैं, फिर हसरतें करते रहते हैं, हाय देखो जरा देखो हम कहाँ रह गए और ये कहाँ पहुंच गए, हाय इनकी तरक्कियां, हाय इनका ये, हाय इनका, तो ना करें जब भी ये चीज हो ना, मैं किस किस आयत को हाईलाइट कराऊं, हर आयत ही हीरा, तो इसको हाईलाइट कर लें, इसको याद कर दें, ला या गुरन का तकल्लुबुल्लदीना कफरू फिल बिलाद मताउन कलील, उनको यहाँ पे पूरी दुनिया भी मिल जाए और उसके बाद आखरत में जहन्नुम है ना, तो उन्होंने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, तो मैंने आपको कई दफा हदीस सुनाई है कि एक गोता दिला के जब जहन्नुम से लाया जाएगा जहन्नुमी को, तो उसे पूछा जाएगा तूने कभी कोई ऐश देखा, वो कहता तो दूर दूर तक मैंने तो उसका नामो निशान नहीं देखा, जो जिसने दुनिया में इतना ऐश किया कि कोई गम नहीं देखा, तो ये तो घाटे का सौदा है इनका, ये क्यों परेशान हो जाते हो तुम देख के, क्या है हम तो ऐसे हो गए, हिजरतें कर रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हाय ये तो देखो कितने हैं, अल्लाह अकबर, सारी बात ना ईमान की है, हमारा ईमान उस तरह से हो जाए ना कि हम वाकई इन आयतों को घोल के, मैं तो कहती हूँ पी ले, वाकई पी नहीं लेना आपने, लेकिन इन आयतों को जज़्ब कर ले अपने अंदर, लाकिन लदीन तकौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब का, ये ना कना बिचारे हैं ये, उनके लिए जन्नातुन तजरी मिन तहती अलअनहारु खालिदीन फीहा, हमेशा रहना वहां पे, हमेशा हमेशा। इनकी तो मताउन कलील है ना, और उन्होंने जन्नतों में कितना रहना है, हमेशा। और अगर एक इंसान को ये बताया जाए कि देखो ये जो तुम्हारे ऊपर अभी मुसीबतें हैं ना, ये बस थोड़ी देर के लिए सबर कर लो, चंद मिनट के लिए, उसके बाद ना तुम्हारे लिए इतना जबरदस्त, अगर तुमने सबर कर लिया ना, इतना जबरदस्त तुम्हारे लिए ये चीजें तैयार की गई, तो वो हंस के उसको झेल लेगा। अब लोग यहाँ पे कितने कॉम्पिटिशन, ये जो खेलों के होते हैं उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ एक वो ट्रॉफी मिलनी होती है, या एक 1,000 का इनाम है, या 1 मिलियन डॉलर का इनाम उन्होंने रखा होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पहाड़ भी चढ़ा रहे हैं उनको, उनको पानी में भी डुबकियां लगवा रहे हैं उनको, कितनी वो मुशक्कत करते हैं कि इनाम मिल जाए हमें। तो मोमिन, अगर तुझे ये पता है कि तकवा वाली जिंदगी, यहाँ पे मुश्किल तो है, ये मुश्किलें हैं, मसाइब भी हैं, सताए भी जाओगे, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इसके बाद जन्नत है ना जो कभी नहीं खत्म होने वाली, तो फिर ये सब सहना बड़ा आसान हो जाता है। उनका मताउन कलील, बहुत थोड़ा है, और तुम्हारा देखो जन्नातुन तजरी, एक जन्नत नहीं बहुत सारी जन्नतें। और ये देखो कि जब इंसान मरता है तो उसी वक्त उसकी आखिरत शुरू हो जाती है, कयामत में तो जाके हतमी फैसला हो जाना है ना, जाने का जन्नत में या जहन्नुम में। लेकिन ये जो बीच में ट्रांजिशन पीरियड है ना, जिसको बरजख कहते हैं, वो भी उसके मुताबिक ही होगी जैसी कयामत के दिन उसका अंजाम है। अगर कयामत के दिन उसको जन्नत मिलने वाली है, तो यहाँ इस दुनिया से जो पहला कदम आखरत में वो रखेगा ना, आखरत उस सबको कहते हैं, मौत के बाद जितने सारी मरहले वो आखरत ही है, ठीक है, वो जो आखरत में पहला कदम रखेगा वो जन्नतियों जैसा भी हो सकता है और जहन्नमियों वाला भी हो सकता है। समझे? तो बरजखी जिंदगी समझ में, जैसे आप एक बुक शुरू करते हैं उसका इंडेक्स होता है ना, बरजखी जिंदगी वो है, जैसे आगे किताब है ना वैसा ही उसका इंडेक्स होता है। तो उनके लिए है फीहा, अच्छा खालिदीना फीहा नुजुलम मिन इंदिल्ला, और ये तो नुजुल है, ये तो स्टार्टर है। आप देखते हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, एपेटाइजर लेते हैं पहले, या आप किसी के घर जाते हैं वो पहले आपको शरबत पिलाता है कुछ, और या कोई एपेटाइजर या स्टार्टर जिसको हम कहते हैं वो देते हैं, फिर उसके बाद खाना आता है। ये जो चीजें आपको आज तक बताई गई हैं, ये तो सिर्फ नुजुल है, असल का तो पता ही नहीं है अभी, असल नहीं पता अभी। ये क्यों नहीं बताया गया अभी? इसलिए कि हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते, हम उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। देखिए ना, आप खुद देखें, आज से 1,000 साल पहले अगर किसी को कहा जाता है जहाज है और तुम जहाज लेना चाहोगे, और ऐसी गाड़ियां हैं और टेस्ला है और मर्सिडीज है और पता नहीं जो भी, तो वो कहेगा मैंने क्या करनी है, मुझे तो ऊंट दे दो, मुझे तो घोड़े दे दो। क्योंकि तो उस जो इंसान का जितना मुशाहिदा होता है ना, उसका विजन, उसका मुशाहिदा, उसका इल्म, उसके मुताबिक ही वो चीज मांग सकता है ना, उसके मुताबिक ही वो ख्वाहिश भी कर सकता है ना। तो आज के इंसान को पूछे तो वो कहेगा मुझे ये गाड़ियां जहाज दे दो, क्योंकि उसकी पहुंच, उसकी अकल की रीच सिर्फ वहां तक है। तो अल्लाह ताला को ये बात पता है कि तुम वहां की चीजों को नहीं समझ सकते। 1,000 साल पहले वाले इंसान को बताया जाए इन गाड़ियों का, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी कि लोहे की ऐसी चीजें हैं, उसको जो वो चल रही है, मैंने उसको क्या करना। तो तुम्हारी अकल में जितनी बात आ सकती है ना, सिर्फ उतनी बताई गई, वरना हदीसे कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो किसी आंख ने ना कभी देखा, ना किसी कान ने सुना, ना कभी किसी दिल पे उसका गुजर हुआ। तो हम तो ये 10 लाख 20 लाख ये बहुत भी कह लेंगे तो इस बुरी दुनिया के बराबर कोई चीज मांग लेंगे, इससे आगे तो हमारी अकल जाती ही नहीं, हम नहीं सोच सकते, हमें पता ही नहीं है, लाख करोड़ हमारे लिए अरब कोई चीज हो सकती है, इससे आगे क्या है हमारे लिए। तो लेकिन अल्लाह ताला ने देखो कैसी तैयार कर रखी है, तुम सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए उन नेमतों का जिक्र भी कर दिया जाए तो तुम समझ ही नहीं सकोगे, तो बताया नहीं गया, जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया, ये तो नुजुल है। वरना आप कहें कि हमने क्या करने, केले खा के वहां पे, मुझे तो वैसे ही केले नहीं पसंद, हाँ हमने क्या करना है, अनार खा के, मैं तो इसमें अनार में इंटरेस्टेड नहीं, ना दूध की नहरें क्या करनी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो दूध वैसे ही पसंद, वो तुम समझते हो ये ऐसी चीजें, ये यहाँ की चीजें, इनके साथ मुकाबला करते हो। और फिर वैसे भी जितना कुछ बता दिया गया वो नुजुली है, मेन कोर्स तक तो अभी तुम पहुंचे ही नहीं हो, असल चीज तो तुम्हें पता ही नहीं है। वमा इंदल्लाही खैरुन लिल अबरार, वो जो अल्लाह के पास है ना, वो जिसका तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत जबरदस्त है नेकोकारों के लिए, बहुत बेहतरीन। अल्लाह अकबर। तो ये जितनी बातें कुरान हदीस में है, वहां पे कैसे इस्तकबाल होंगे, कैसे महल होंगे, बाग कैसे होंगे, मजलिसें कैसी होंगी, सीटें मुसनदें कैसी होंगी, सवारियां कैसी होंगी, दरख्त फल कैसे होंगे, लिबास कैसे होंगे, सारा कुछ तो बता दिया गया। ये सिर्फ स्टार्टर है। अल्लाह अकबर। ये एक तरफ है, वा इंदल्लाही खैर, जो अल्लाह के पास है वो तो बेहतरीन है, उसका नहीं तुम्हें बता दी। वह इन नमिन अहले किताब, और अहले किताब में से, अब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लैसु सवा, सब इल्म बराबर नहीं है, अहले किताब भी सब एक जैसे नहीं है। और आखिर में आके इनकी फिर तारीफ की गई, वो अहले किताब में से भी वो हैं, लमई यु मीनू बिल्ला, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैकुम वमा उनजिला इलैहिम, जो तुम्हारे ऊपर उतरा उसको भी, उस पर भी ईमान रखते हैं, जो उनकी तरफ आया यानी तौरात इंजील उसको भी मानते हैं, यानी कुरान हदीस भी मानते हैं, तौरात इंजील भी मानते हैं। खाशियाईन लिल्लाह, वो डरने वाले हैं अल्लाह से, ला यश्तरूना बी आयात इल्लाही समन कलीला, पहले बताया गया ना, वो बेच देते हैं अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर, अब कहा गया वो ये इनमें ऐसे भी लोग हैं, सब एक जैसे नहीं है, ये भी लोग हैं जो कि अल्लाह की आयात को नहीं बेचते, दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपना दीन नहीं बेच देते। उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनके लिए भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अजर हैं, बहुत उम्दा अजर है। इन अल्लाह सरी अल हिसाब, अल्लाह ताला के यहाँ जो हिसाब होना है ना, वो कोई लंबे चौड़े खाते नहीं है, अल्लाह के यहाँ बड़ा स्विफ्ट, बड़ा तेज हिसाब हो जाना है। ये ना समझना इतने लोगों का कैसे हिसाब होगा कयामत के दिन, पता नहीं क्या, नहीं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह को हिसाब लेने में देर नहीं लगेगी। तो इनका भी हिसाब हो जाना, जिन्होंने अपनी भी किताबों के ऊपर ईमान लेकर आए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उन पे भी ईमान लेकर आए, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो यहूद के अंदर तो तफासीर में लिखा हुआ है कि 10 से ऊपर नहीं गए, जो यहूद मदीना थे ना उनमें 10 से ऊपर नहीं गए जो मुसलमान हुए, यानी इतने कम ईमान लेकर आए, इस्लाम लाए, लेकिन नसारा में काफी लाए थे। आपको पता है नजाशी भी लेकर आए, और इस तरह बहुत से और नसारा भी ईमान लेकर आए। अब ये जो लास्ट आयत है, ये समझ लें ये खुलासा है सारी बातों का, जो जितनी अभी तक सूरत गुजरी है ना उसका एक खुलासा कर दिया गया। या ये लदीना आमन, ए ईमान वालों, इसबिरू, सबर करो। कितनी दफा इस सूरत के अंदर सबर और तकवा, सबर और तकवा कितनी दफा आया ना, ये अगर सबर और तकवा इख्तियार करोगे वो तो तुम्हारे तजियतें पहुंचाने में लगे ही हुए हैं, तुमने सबर और तकवा करना है। आज भी ये बात आई कि तुम उनसे सुनोगे ऐसी बातें, लेकिन सबर और तकवा, तो सबर यानी जो अजियत इंसान के ऊपर आए उस पे सबर करना, उस पे अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से बचाना, यानी इंसान का दिल कर रहा है कि जो उसके ऊपर मुसीबत आ गई है उसके ऊपर चीखे चिल्लाए अपने आप को पीटे या गिले शिकवे करे या वहवेला मचाए, तो लेकिन उस वक्त अपने आप को रोक लेना, ये सबर। अब फिर मैंने आपको बताया दीन पे चलने में भी मुसीबतें बर्दाश्त करके भी चलते रहना, ये सबर है। इबादत में भी मुशक्कत होती है, उसको बर्दाश्त करना भी सबर। तो इस बीरू में ये सारी चीजें आ गई। और जब साबिर हुआ है तो किसी के मुकाबले, यानी अजियतें भी लोग देंगे, मुश्किलात भी खड़ी करेंगे, रुकावटें भी खड़ी करेंगे अल्लाह के रास्ते में चलने में, लेकिन उसके उस वक्त इस सौबिर, उस वक्त उनके मुकाबले पे सब्र करना, यानी उस वक्त हिम्मत हार नहीं देनी, उस वक्त भाग नहीं जाना, चाहे वो दुश्मन है जंग के मैदान में या घरों में कोई है जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, उस वक्त डट जाना है।
उस वक्त उनके यानी लोगों के मुकाबले में, एक है इंसान के अपने ऊपर कोई मुसीबत, जैसे आ गई कोई ऐसी मुसीबत उसके ऊपर, कोई कहत साली आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई ऐसे आ गया, वो भी एक मुसीबत है, मर्ज कोई बीमारी ऐसी आ गई, खौफ पैदा हो गया, ये भी सारा सबर। लेकिन दूसरों की बातों पर, उनकी ईजाओं पर अपने आप को दीन पे फिर भी चलाते रहना, अपने आप को नेगेटिव होने से क्या, अब आपका दिल कर रहा है मैं ऐसी खरी खरी सुनाऊं ना इसको, आया ऐसा इससे इंतकाम लूं, इसने मुझे ये कहा है मैं भी इसको ये करूं, इससे खुद को रोक लेना, ये है साबिरू। अब ये हम कहें कि हम जंग के मैदान में नहीं है, लेकिन बाज दफा अपनी फैमिलीज की तरफ से, अपने नेबर्स की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी ईजाएं पहुंचती हैं, उन पे भी अपने आप को जब्त करके रखना, तहम्मुल बर्दाश्त, ये है सबिर। समझ आ गई कि इसबीरू क्या है और साबिरू क्या है, और राबितू, राबितू क्या है, यानी बांधना खुद को, बांधने के अंदर इसमें बहुत सारी बातें, बहुत भी मैंने आपको बताया कि ये बड़ा जामे लफ्ज है, तो इलामा राग़िब इस्फ़हानी ने इसके बारे में लिखा है कि मुसलमानों की सरहदों की निगेबानी और हिफाजत करना, ये भी खुद को बांधना, कहीं दुश्मन हमला आवर हो जाए इस्लामी मुमलिकत पे तो उसका दिफा करना, ये भी राबित हुआ है, और इसी तरह दुश्मन के मुकाबले में खुद को तैयार रखना, ये भी राबित हुआ है। फिर इसकी एक और किस्म ये है कि नफ्स कि निगेबानी करना, हिफाजत करना कि कहीं शैतान कोई गुनाह ना करा ले, ये भी राबितू में आ जाता है। इसी तरह ऐसे वक्त में वुजू करना जिस वक्त इंसान का दिल ना कर रहा हो, ये भी खुद को बांधना है ना, ये भी रिबात है, रिबात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिससे गुनाह मिट जाते हैं और दर्जे बढ़ते हैं, कि तकलीफ में इंसान वुजू करे, यानी अब ठंड है सर्दी है नहीं दिल कर रहा, या उठने का दिल नहीं कर रहा, उस वक्त वुजू करना, मुंह पे पानी डालना वो बहुत मुश्किल लगता है, कई लोग कहते हैं वुजू में इतना मुश्किल लगता है कि अगर वुजू ना होता तो हम नमाज पढ़ लिया करते, इसकी वजह से नहीं नमाज पढ़ते, तो उस वक्त काम में पूरा पूरा वुजू करना, ये है रिबात। मस्जिदों में आना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, फरमाया यही रिबात है। दीन में तेजी दिखाना, दीन के रास्ते में कामों में जल्दी करना और उसके अंदर चुस्ती दिखाना, ये रिबात है। मस्जिदों को आबाद करना है, ये भी रिबात है। इसी तरह नमाजों पे अपने आप को जमा के रखना, ये रिबात है। ठीक है, तो ये सारी रिबात की किस्में हैं कि अपने आप को बांध लेना, जब मुश्किलें हैं ना उस वक्त नेकी पे खुद को बांध के रखना कि मैंने नहीं ये छोड़ना, ये रिबात है। ठीक है, तो ईमान वालों तुमने सबर भी करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम्हारे आगे ऐसे दिन आ रहे हैं जो बड़े सबर के हैं, बड़े सबर के दिन आ रहे हैं, तो तुम डटे रहना उन दिनों में। इसके बाद ऐसे दिन आ रहे हैं फरमा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, और उनमें फरमाया था कि उनमें दीन पे चलना ऐसे होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना, तो ऐसे सबर के दिन आने हैं, कितना मुश्किल होगा दीन पे चलना, तो उस वक्त भी तुमने, चाहे मुआफिक हालात हैं ना मुआफिक हालात हैं, दुश्मन जो है वो उन्हें उसने शिकस्त दे दिया, जख्म लगा दिया तुम्हें, तब भी सबर, रिबात, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, और तकवा का समझ आ रही है ना, चलते रहना फिर भी अल्लाह के रास्ते पर, कोई ऐसा काम जो कि अल्लाह को नापसंद हो उसकी तरफ ना बढ़ना, वो तकवा, और तकवा के भी दर्जे हैं, मगर तकवा का लीस्ट जो दर्जा है ना, लीस्ट वो ये है, मैंने आपको बताया था ना, नेकी वो जो अल्लाह जिन चीजों से राजी हो उनको करना, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उनसे बचते रहना, यही तकवा है। तो लीस्ट तकवा का लेवल क्या है कि इंसान फराइज अंजाम दे और कबीरा गुनाहों से बचा रहे, ये लीस्ट है लेवल। इसके बाद तकवा के और दर्जे हैं, आपको मैंने बताया था तकवा के बहुत बुलंद, आगे जितना भी तकवा में आप बढ़ना चाहें, फिर तो इंसान सगीरा गुनाहों से भी बचता है, ऐसे चीजों से भी बचता है जो लघवियात हैं,
और फिर दूसरी तरफ नेकियां सिर्फ फराइज नहीं करता, फिर नवाफिल तक भी जाता है और सुन्नतों तक भी जाता है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ये करोगे तो तुम फलाह पा जाओगे। क्योंकि आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लोगों के अंदर ये कि उनमें डिटर्मिनेशन नहीं है, वो जम के कोई काम नहीं कर पाते। 4 दिन ये काम किया, उसके बाद बेसब्री इतनी है कि वो छोड़ के दूसरा शुरू कर दिया, फिर बेसब्री इतनी है फिर वो भी छोड़ के फिर तीसरा शुरू कर दिया, फिर चौथा शुरू, किसी चीज में जमना ही नहीं। तो जब जमाओ ही नहीं है, ना दीन पे जमाओ है, ना दीन के किसी कामों पे जमाओ है, तो फिर यही तो यहाँ पे नसीहत की गई है कि इस भी रू और सा भी रू, तो चाहे रिश्तेदार कितना ही सताए, सा भी रू और रा भी तू, उनके साथ जुड़ के रहना है, राबते में रहना है, फिर भी राबता नहीं खत्म कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपकी सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई। नुज़ुलन के सिलसिले में एक बात और आपको सिर्फ बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ भी सिखाई हुई है, रब्बी अनजिलनी मुनजलन मुबारक वअंत खैरुल मुनजिलीन। उसमें भी नुज़ुल की बात आती है कि अल्लाह मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ पे मेरी मेहमानी बेहतरीन हो, बरकत वाली मुबारक मेहमानी मुझे अता फरमाना। तो सूरत दुआ है कि यानी जो भी जिस जगह पे मैं उतरूँ, जिस जगह भी मैं ठहरूँ, जिस जगह भी मैं बैठूँ, वहाँ भी मेरी मेहमानी जो है ना वो बेहतरीन हो। तो क्योंकि तू बेहतरीन मेहमानी करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह मुकम्मल हुई और इसके साथ ही ज़ाहरुवैन आपकी मुकम्मल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों के बारे में जो फरमाया है कि ये कयामत के दिन उसके लिए जो इनको बहुत बहुत पढ़ता है इन इन दो सूरतों को, तो ये सूरतें उसके लिए बादलों के साए की सूरत में आ जाएंगी या परिंदों के झुंड की सूरत में आ जाएंगी, इसकी सिफारिश करेंगी, इसके लिए साया बनेंगी। तो इनको पढ़ते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इनसे गो थ्रू करते रहना है। आप देख लें कि कितने आपको आज भी एक सिर्फ सबक में भी कितने लेसन्स मिले हैं आपको। तो ये छोड़ने वाली सूरतें नहीं है, और आपको मुबारक हो इनका इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने कुरान की कुहान का इल्म भी हासिल कर लिया, और दो दो नूर जो हैं यानी ज़हरवैन इनको कहा गया ना, ये दो नूर हैं, इनको आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया है। तो अल्लाह ताला ये इस इल्म को आपके लिए मुबारक करे, और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए इसमें इंशाअल्लाह ताला। अब आज की आयात की तिलावत सुनते हैं।
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.